भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शब्द का उच्चारण किया जो एक महामंत्र है, लेकिन इस ओम शांति शब्द पर भी सभी शांत नहीं हुए, अपनी बातचीत में लगे रहे। अभी भी मैं कह रही हूँ, जो पीछे आने वाले हैं वो मेरी इस बात को सुनेंगे नहीं, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि विशेष माताओं को ईश्वर ने, जिन्हें हम शिव नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि वे कल्याणकारी हैं, उन्होंने माताओं को शिव शक्ति कहकर पुकारा। आप कभी भी जम्मू कश्मीर साइड में जाएं, तो देवियों पर जाने वाले शिव शक्ति ही कहकर देवियों को पुकारते हैं। और परमात्मा शिव के आप सब संतान यहाँ बैठे हैं, तो आप सब शिव शक्तियां हैं, क्योंकि प्रभु की रचना साधारण रचना नहीं होती, उसकी रचना विशेष होती है। जब हम उससे विस्मृत हो जाते हैं तो हम स्वयं को साधारण बना लेते हैं, असल में हम साधारण है नहीं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम शिव की वो शक्तियां हैं जो अपनी शक्ति को दुष्टों के संहार में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चित्र चित्रण किया गया है कि शिव शक्तियों ने असुरों का संहार किया। हमारी वाणी जो शक्ति स्वरूप पर है वो वहां इस्तेमाल होनी चाहिए जहां किसी दुष्वृत्ति के विनाश करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी वाणी को भी बिना किसी मतलब, बिना किसी अर्थ, बिना किसी कारण इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शक्ति वेस्ट जाती है, हमारी वाणी में बल नहीं आता है, हमारे शब्दों में सत्यता नहीं रहती। फिर हम ये कहते हैं हम पर किसी को विश्वास ही नहीं होता। कैसे विश्वास हो, क्योंकि आपके बोल में समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, तब विश्वास बैठ सके। इसलिए कई बार मैं देखती हूँ कि माताएं जब संगठित होती हैं तो बहुत बातचीत होती हैं, लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर जो हमको अनुभव हुआ, क्योंकि ये माताओं का ही एक संगठन हुआ, प्रारंभ हुआ, और इतनी शांति थी उस समय जिसका मैं आपको सब वर्णन करके सुनाऊंगी। तो आज मुझे जो आपकी सेवा का कार्य मिला कि मैं इस यज्ञ के इतिहास को 1936 से 1936 से 2016 तक का इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास को थोड़े शब्दों में आप सबके सम्मुख रखूं। और जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक रहे, जिन्हें हम प्यार से बाबा शब्द कह के संबोधित करते हैं, जिनका अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया है। सर्वप्रथम इस विद्यालय के फाउंडिंग फादर जो साकार माध्यम रहे, मैं उन्हीं से ही इस यज्ञ की, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जीवन कहानी प्रारंभ करूंगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये शंका रहती है कि जब ये लोग शिव बाबा कहते हैं तो शायद साकार ब्रह्मा बाबा को ये शिव बाबा कहते हैं, या कहते भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो शायद इन्हीं को ही भगवान कहते हैं। तो मैं इन सब बातों के उत्तर आपको देना चाहूंगी। सर्वप्रथम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन के संबंध में मैं जो कहना चाहूंगी कि आपका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक मध्यम वर्गीय कुल में हुआ। आपके लौकिक पिता एक गांव में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल थे और एक टीचर या प्रिंसिपल का बच्चा पहले समय में बहुत महान माना जाता था। सब समझते थे ये हमारे टीचर का बच्चा है, ये हमारे प्रिंसिपल का बेटा है। तो मान तो अवश्य मिला, लेकिन ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की। साकार ने ब्रह्मा बाबा का पहला बिजनेस गेहूं के व्यापार का था, लेकिन धीरे धीरे इस व्यापार से ऊपर उठते हुए अपनी बुद्धि की कुशलता के आधार से आप एक गेहूं के व्यापारी से हीरों के जोहरी बन गए और हीरों का व्यापार किया। हीरों का व्यापार आप सब समझ सकते हैं ये धंधा किसी साधारण मनुष्यों से नहीं होता। इस व्यापार को करने के लिए अवश्य बहुत धनाढ्य व्यक्ति या कुछ राजे महाराजे, क्योंकि आप हम सबको मालूम है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व भारत में 700 रियासतें थी जहां राजे लोग राज्य करते थे, और केवल वही राजे नहीं, ब्रिटिशर्स का रूल होने के कारण ब्रिटिशर्स के साथ भी बाबा के बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, और वो किसी भी राजे के यहाँ अगर हीरों का कुछ बनी हुई ज्वेलरी दिखाने के लिए जाते तो ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी चीज ले जाएगा और रानी को प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन बाबा के नैतिकता के ऊपर लोगों को इतना विश्वास था, धार्मिक भावना में परिभूत होने के कारण उन पर सब बहुत विश्वास करते थे। इसलिए डायरेक्ट महलों में जाकर के रानियों को उनके पसंद की ज्वेलरी आदि देते थे, और नए नए डिजाइन बनाना, नवीनता बिजनेस में लाना, ये बाबा की एक महानता थी। लेकिन इस बाबा ने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी अपने जीवन को धर्मपरायण बनाकर रखा। कभी भी मीट मछली या शराब सिगरेट इन चीजों को छुआ तक नहीं। इतना ही नहीं, जब किसी बड़े व्यक्ति जिसको राजे कहा गया, अगर उनकी अपने यहाँ पार्टी होती तो उस पार्टी में भी शाकाहारी भोजन होता, शराब सिगरेट आदि उन्हें ऑफर नहीं किया जाता। तब वो लोग कहते थे, ये बाबा के मुख से हमने जो सुनी हुई बातें हैं मैं आपको वही सुना रही हूँ। तब उनको लोग कहते थे, आने वाले अतिथि, कि दादा, क्योंकि प्यार से उनको दादा लेखराज उनका नाम था और दादा लेखराज के नाम से विख्यात थे। दादा लेखराज पार्टी कुछ फीकी रही, न उसमें मांस न मदिरा न सिगरेट, तो बाबा उनको यही कहते थे। वो ये भी कह देते, ये तो जैसे घास की पार्टी हो गई, और बाबा आगे से ये उत्तर देते हंसते हुए प्यार से, क्या मुझे कागज के नोट देते हो, इसके बदले में मैं आपको रतन हीरे देता हूँ, मैं आपके कागज के नोटों के पीछे अपना धर्म नहीं त्याग सकता, जो मेरी धर्म मर्यादाएं हैं वो सदा कायम रहे। यहां तक अगर कोई उच्च मेहमान भी उस समय उनका आगमन होना होता जब उनकी पूजा का समय होता, तो बाबा कभी भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं जाते, उन्हें बड़े प्यार से पहले से ही बता देते कि वे समय मेरा भगवान को रिसीव करने का है, इसलिए क्षमा करना, मैं उस समय आपको रिसीव करने नहीं आ सकूंगा। हाँ, अन्य सब जाते आप भगत से लाते, लेकिन अपनी असुविधा उन्हें स्पष्ट कर देते। तो ये मैं इसलिए सुना रही थी कि उनका लौकिक जीवन साधारण जीवन का अनुभवी भी अनुभव युक्त रहा, असाधारणता से ऊपर उठे तो बहुत ऊपर उठे, हीरे जवाहरात के व्यापारी भी बने और राजाओं महाराजाओं से कनेक्शन जुटे, नेपाल नरेश से उनके कनेक्शन रहे, उदयपुर राजा उसका विशेष वृतांत आता है कि जब उदयपुर राजा के यहाँ पर आप गए तो आप उनकी गैलरी में जिस समय वहाँ राज्यसभा होनी थी अकेले ही बैठे थे, तो कहते हैं उदयपुर राजा ने कहा कि लक्की बाबू के फैमिली नहीं है, तो किसी ने कहा कि उनका परिवार एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, इसलिए वो सब वहां जाने की तैयारी में है। तब राजा ने पूरे परिवार को रोका और कहा कि सभी परिवार सहित दादा यहाँ बैठेंगे, और इस दरबार के पूरा होने पर उन्होंने विशेष उनके परिवार को मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजा। तो इतना उनका आव भगत किस बात से था, ये उनकी नैतिकता थी, ये उनकी चरित्र की ऊंचाई थी, ये उनके सात्विक जीवन का वो श्रेष्ठता थी जो उनको मान दिलाती थी। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर साकार में ये बाबा यहाँ आकर खड़े हो जाएं, सारी सभा में से वो बिल्कुल भिन्न प्रतीत होंगे। उनकी लंबाई, उनका कद, जो उनका वेशभूषा बड़े साधारण, लेकिन जो उनका रूप में आकर्षण था, रूहानियत थी, दिव्यता थी, वो एक बार उस रूप को निहार लेने वाला उस रूपवान से पुनः मिलकर दो शब्द बोलने का इच्छुक हो जाता था। ऐसा बाबा का स्वरूप था। हम उनके साथ बहुत समय रहने का सौभाग्य मिला, उनके साथ घूमने का सौभाग्य मिला। जब वो 90 वर्ष की आयु में थे, उस 90 वर्ष की आयु में भी वे हमको इन पहाड़ों की चोटियों पर ले जाया करते थे, लेकिन इतनी तेजी से चलते थे कि हम बच्चे इतना नहीं चल पाते थे। इससे कुछ वर्ष पूर्व जब वो पहाड़ों पर बच्चों को लेकर जाते थे तो कह देते थे कि जो बुजुर्ग है नहीं चल सकते, वो पहाड़ों पर नहीं चलना, और अगर कोई गिर जाएगा तो उसे ऊपर जाने पर प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ कर ऊपर जाना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से भी वो पूरे सुडोल थे, व्यापारिक रूप में भी बुद्धिवान थे और कुशल थे, पारिवारिक रूप में भी उनका जीवन अति श्रेष्ठ था, अपने परिवार को सदा संतुष्ट कर चले, क्योंकि मैं उनके सभी बच्चे और बच्चियों से मिल चुकी हूँ। कैसे वो बाबा की बात करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्या थे हमारे बाबा, कितना उन्होंने हमको प्यार दिया, दुलार दिया। अपनी एक बच्ची की जब उन्होंने शादी की तो शादी एक योगी राज से की, जो चिराकाशिक मठ के मुख्य थे, उनके वो बहुत समीप थे और स्कूल में टीचर थे। इतने अमीर होने के बावजूद भी अपनी बेटी की शादी एक योगी राज से और एक साधारण से की, क्यों भला? बाबा यही कहते थे कि मेरे घर का वातावरण धार्मिक बना रहे, इसमें किसी प्रकार भी धर्म का खलल ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई उच्च कुल का दामाद आता है तो कई प्रकार की इच्छाएं प्रकट कर सकता है, और बाबा का जीवन जो सिंपल था वो अपने घर के उस सतोगुणी वातावरण को तमोगुणी नहीं बनाना चाहते थे। तो इतना सब जीवन में होने के बावजूद भी उन्हें सत्य की खोज सदा रही, यही बाबा सुनाते थे कि आखिर ये संसार क्या है, हम कौन हैं? और इस सत्य की खोज ने उनको 12 गुरु कराए, अपने भक्ति काल में उन्होंने 12 गुरु किए। 12 गुरु का तात्पर्य बाबा सुनाते थे कि कोई प्रश्न एक गुरु जी से पूछता तो वे गुरु दूसरे गुरु की तरफ रेफर कर देते कि आप उनसे बात कीजिए, वो आपको ये बताएंगे। और दूसरा गुरु कई बातों में तीसरे गुरु की तरफ रेफर करते। इस प्रकार 12 गुरु किए, यात्राएं सब प्रकार की यात्राएं की। बाबा सिंधी जानते थे अच्छी तरह, क्योंकि सिंध देश के रहने वाले थे। हिंदी भी बाबा पढ़ते थे, इंग्लिश के भी न्यूज पढ़ते थे, ये बाबा सब जानते थे। लेकिन इतनी भक्ति भावना, यात्राएं, तीर्थ, दान पुण्य में बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि अपने गुरु के आने पर बाबा सुनाया करते थे कि मैं विशेष एक चौकीदार रखता था जो रात को किसी का कुत्ता ना भौंके, ताकि मेरे गुरु की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। उनके वॉशरूम को गुलाब जल से साफ कराता ताकि गुरु वहां जाएंगे तो किसी प्रकार की बदबू ना आए। इतना गुरुओं में श्रद्धा, इतनी भक्ति में भावनाएं। और घर के वातावरण में अपने बच्चों को भी ये अच्छी बातें बचपन से सुनाते रहे। कई बार उनकी बच्ची बताती थी कि हम जिस पर बैठ करके चौकी पर जहां गद्दी लगा देते थे, वहां भगवान की हम थोड़ी देर आरती करते, और जब हम आरती करके उठते तो गद्दी के नीचे से कुछ पैसे निकल आते, और वो पैसे स्वयं रखते थे और फिर कहते थे ये पैसे दान करने के लिए तुम्हें भगवान ने दिए। इस प्रकार बच्चों में भी दान वीरता की भावनाओं को बढ़ते रहे। अब बाबा के जीवन का परिवर्तन मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि कैसे ये सब परिवर्तन उनके जीवन में आया। 1936-37 में सिंध हैदराबाद का जो वातावरण था, उस समय माताओं के ऊपर एक बहुत जुर्म हुआ करता था। जुर्म इस बात में कहेंगे कि वो घर की चार दीवारी के मध्य ही रहेंगे। अगर बाहर जाती थी तो हमको हमारी दादियां दृश्य दिखाती थी कि सारा मुंह ढक लेती थी, केवल एक आंख ही नंगी रखती थी जिससे कि हम कुछ देख सकेंगे, बाकी पूरा ढका हुआ चेहरा हमारा चाहिए। और बाबा श्री नारायण के उपासक थे, विष्णु रूप के उपासक थे, और उनके यहाँ जब एक मूर्ति लेकर कोई आया तो उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण जी के पांव दबा रही थी। तो बाबा ने एक आर्टिस्ट को बुलाया और आर्टिस्ट को बुलाकर कहा कि इस चित्र से लक्ष्मी जी को रिहा कर दो, ये ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी सदा पांव ही दबाती रहेगी। ऐसा नहीं कि पुरुष प्रति भावनाएं कोई गलत डालने की भावना थी, लेकिन स्त्री पुरुष में सम भावनाएं आनी चाहिए। एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना आनी चाहिए, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए बाबा ने ऐसे चित्र को चेंज करा दिया, कहा लक्ष्मी जी का अलग चित्र बनाओ, श्री नारायण जी का अलग चित्र बनाओ। और एक बार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं ऐसे ही बैठा था बॉम्बई में, क्योंकि उनका व्यापार था बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे में माल लाना ले जाना, मकान अपना यहाँ भी था और कलकत्ता में भी अपना भवन था, जहाँ पर उस समय अंग्रेजों का राज्य होने के कारण विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया आदि से भी कनेक्शंस थे। तो बाबा उस समय का सुनाते हैं कि मन अपने बॉम्बे में घर में बैठा था तो मैंने साक्षात्कार में क्या देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज मूर्त मेरे सामने आई है, और वो मूर्त सामने आकर ऐसे हाथ करती हुई इतने शब्द उच्चारण करती है अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी वही हो। इतने में श्री कृष्ण, बद्रीनाथ, जगतनाथ पांच स्वरूप उनके सामने आते हैं और पांचों स्वरूप हाथ ऐसे करके वरदानी मुद्रा में इतना शब्द बोलते हैं, तत्त्वम। और ये दृश्य पूरा होता है। बाबा अपने गुरु जी से पूछते हैं कि जो मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, वो मुझे कहते हैं अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी वही हो, ये ऐसे क्यों कहा गया? तब गुरु जी ने इतना ही कहा कि गुरु कृपा से साक्षात्कार हो जाते हैं, भगवान ने कुछ आपसे कराना होगा, लेकिन जैसे किसी का आंसर कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्राप्त करने के लिए बाबा ने थोड़े समय के लिए अपने घर परिवार से समय निकाल, अपने कार्य व्यवहार से समय निकाल, बनारस काशी में चले गए, क्योंकि बनारस में उनका मित्र था जिसका बहुत बड़ा बंगला था और बाबा वहां जाकर कुछ समय शांति के अभ्यास में बैठे कि आखिर ये सब क्या दृश्य है, मुझे क्यों कहा गया है कि हम विष्णु चतुर्भुज तत्व। वहां उनके समाधि स्थिति में उन्हें बहुत सुंदर दिव्य साक्षात्कार हुए। जो बाबा साक्षात्कारों का वर्णन करते थे तो ऐसा लगता था कि आज भी वो दृश्य उनके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा। कहा मैंने क्या देखा कि ये विश्व एक गोले की न्यायी है और बहुत बुरी तरह इस संसार का विध्वंस हो रहा है। अब विध्वंस के तीन तरीके देखे। एक तरीका था एटॉमिक बॉम्ब, हालांकि उस समय बेबी बॉम्ब का भी प्रयोग नहीं किया गया था। उस समय उन्होंने बॉम्ब का कैसे मैं नाम लेती हूँ वो मैं बताऊंगी। पहला एटॉमिक वॉर, दूसरा गृह युद्ध सिविल वॉर और तीसरा प्राकृतिक युद्ध नेचुरल कैलमिटीज। ये तीन तरीके से इस विश्व का बहुत बुरी तरह विनाश हो रहा है। बॉम्ब्स के द्वारा वो जो देखा गया का दृश्य देखा कि जैसे ऊपर आकाश से कोई चीज गिरती है और अग्नि वर्षा हो रही है, आग लगती है, बहुत बुरी तरह मनुष्य मर रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं आपस में गले काट रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से, एक जाति दूसरी जाति से, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बड़ा भयानक दृश्य है। और तीसरा बाढ़, तूफान, भूचाल, अग्नि, ये सब पांचों तत्व उपद्रव मचा रहे हैं। इतना बुरी तरह विनाश देखा। बाबा सुनाते थे उस समय कि ऐसा लगता था कि जैसे बिल्डिंग्स ताश के पत्ते की न्याई ऐसे गिरती हैं, जबकि उस समय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती थी, उच्च मंजिल मकान नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाबा ने ऐसा दृश्य देखा कि वो सब गिर रहे हैं, बड़ा भयानक दृश्य देखा। तो बाबा ने उस समय ये कहा कि अश्रु धारा बह उठी कि भगवान जिसने ये दुनिया रची, इस दुनिया में इतना दुख, इतनी परेशानी, इतना भयानक विनाश, ये सब क्या हुआ, तेरी दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। केवल रोने के सिवाय कुछ नहीं, मैं अश्रु धारा बहा रहा था और बड़ा कांप रहा था। देखिए, इतने में एक नया दृश्य देख लिया, जैसे एक ग्लोब है और वो ग्लोब का हिस्सा थोड़ा उलटता है। जहाँ भयंकर विनाश का दृश्य है, वो विनाश का दृश्य का साइड नीचे होता है और एक ऊपर साइड आता है, जिसमें इतने सुंदर महल हैं, सोने के महल हैं, हीरे जड़ित हैं, प्रकृति की छटा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ वो रंग नहीं जो मैं कहूँ कि ऐसे रंगों से वो चीज रंगी हुई थी। हर पत्ता पेड़ का ऐसे आवाज दे रहा था जैसे कि सुंदर म्यूजिक हो रहा है। पानी से इतनी सुगंधित आ रही थी जैसे सेंट और इत्र किसी ने डाल दिया हो। पक्षी कोई अपने ही प्रकार के थे। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर संसार। ऐसा देखकर मुझे खुशी होती है। फिर आवाज आती है, लखी बाबू जागो जागो। अब ऐसे विश्व को, श्रेष्ठ विश्व को लाने के निमित्त बनना है। उस समय बाबा को दृश्य पूरा होते ही मन में इतना वैराग्य आया कि इतना भयानक दृश्य और इतना सुंदर संसार, ये कहने वाला कौन है और ये दिखाने वाला कौन है। यही मन में चलता था, आप कौन हो, मुझे बताओ तो सही आप कौन हो, और ये संसार तुम्हें लाना है। तो बाबा कहते थे, इसका दिमाग घूम गया कि मैं साधारण इंसान, मैं ऐसा संसार कैसे लाऊंगा और ऐसा संसार कैसे आएगा। तब उस समय, इससे पूर्व जब बिजनेस में काफी ऊंची शिखर पर जा चुके थे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि अभी आप 60 वर्ष के हो चुके हो, क्यों नहीं बिजनेस समेट लेते और वानप्रस्थ ले लें। तब बाबा ने अपनी धर्म पत्नी को ये शब्द कहा था कि अभी तो बिजनेस बड़ा है, कुछ लाखों और कमाने दो, फिर निश्चिंत होकर के बिजनेस छोड़कर काम करूंगा, अभी थोड़ा और कमाऊंगा। और उसी कमाई के भावनाओं के मध्य ही ये साक्षात्कार उनको जब हुआ, कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने फैसला कर लिया कि अब से मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। ये नहीं कि फैसला ऐसे ही कर लिया, लेकिन बाबा कहा करते थे, रतन देखता था लेकिन ऐसा लगता था ये कोयले हैं। अरे ऐसा मुझे क्यों प्रतीत होता है, मैं तो रत्नों का पारखी रह चुका हूँ, ये कोयले क्यों लगते हैं। लेकिन ऐसा लगे कि ये बिजनेस मुझे नहीं करना है। और बाबा ने बिना घर वालों के पूछे बिजनेस समेटने का निर्णय किया। हैदराबाद से कलकत्ता चले गए और जाकर अपने पार्टनर को ये कह दिया कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। पार्टनर इन पर निर्भर था, तो पार्टनर ने कहा ये कैसे होगा। कहा नहीं, मैं कुछ आपसे लेन देन के विषय में झगड़ा नहीं करना चाहता। ये कागज है, जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दीजिए और जो हिस्सा आपका बनता है वो आप ले लीजिए। और इतने में बाबा के लौकिक घर से प्रोग्राम कुछ होने के कारण उन्हें बुलावा आया, तो बाबा ने फैसला किए बिना ये कह दिया कि आप सब फैसला करके मेरे साइन पहले से ही करा लो, फैसला करके कागज मुझे भेज देना और मैं जा रहा हूँ। बिना कुछ बात किए अपने बिजनेस का फैसला, जो करोड़ों का बिजनेस था, एकदम उस बिजनेस को समेट लिया। और समेटने पर जब घर आए तो गीता पाठी बाबा शुरू से रहे। जब तक गीता का पाठ नहीं करते थे तो बाबा कहते थे इसने कभी अपने मुख में पानी भी नहीं डाला होगा, पहले गीता का पाठ करूंगा, भगवान की बंदगी करूंगा, पूजा करूंगा, तब सब कुछ करूंगा। और जैसे कि मैंने बताया, उस समय माताओं की दशा बंधन में ज्यादा होने के कारण इतनी स्वतंत्र नहीं थी, तो बाबा की लौकिक में जो पत्नी थी वो हमें सुनाती थी कि मेरे लिए मेरा पति ईश्वर और भगवान, मुझे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा समझती थी। और बाबा भी कहते थे कि जब मुझे गद्दी पर जाना होता था, इसे कहता था जो कुछ करना है तुम करो, फिर मुझे जाना है, तो वो आरती पति की करती थी, फूल पति पर चढ़ाती थी और पति ही परमेश्वर मानती थी। और जब बाबा ने अपने बिजनेस को समेट लिया और गीता का अध्ययन करते थे और अपने बच्चों को बिठा करके गीता सुनाते थे, लेकिन एक बार का बाबा का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाते थे कि घर में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब साक्षात्कार क्या है, तो घर में गुरुजी बुलाए हुए थे और गुरुजी की सभा में काफी व्यक्ति बैठे थे और बाबा भी गुरुजी के सम्मुख कथा सुनने बैठे थे। ये फर्स्ट टाइम था कि गुरुजी की कथा चल रही थी और कथा के मध्य से बाबा ने कहा कि मैं उठकर कमरे में चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई खींच रहा है, साइलेंस, मुझे, मैं साइलेंस में जाना चाहता, और अपने कमरे में गए। बाबा की लौकिक पत्नी सुनाती थी और उनकी बहू भी सुनाती थी कि जब हमने देखा बाबा सभा से उठकर, गुरु की सभा से उठकर चले गए, क्या हुआ? तो पत्नी अंदर गई, जाकर देखा तो वो ऐसे ही गद्दी पर बैठे हैं, आंखें खुली हैं। जब सास भी नहीं आई तो बहू गई भी, क्या बात हुई है? और उसने क्या देखा कि बाबा की आंखें खुली हैं, लेकिन सारे कमरे के अंदर जैसे सुनहरी सुनहरी लाल लाल एक लाइट ही लाइट है और सारे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश के मध्य बाबा ऐसे बैठे हैं, आंखें ऐसे खुली देखने में आई जैसे बल्ब जल रहे हैं। कहा, मैं शांत होकर बैठ गई, बाबा की लौकिक पत्नी बाहर चली गई, ये बहू कहती है, दिल नहीं किया कि उनको हिलाएं। कहा, इतने में क्या सुना कि बाबा के मुख से शब्द निकले, धीरे धीरे निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतने तीन शब्द निकलने के पश्चात बाबा की आंखें जैसे बंद हो गई, और बंद होने के कुछ क्षणों के बाद उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल कर कहा, ये कौन था, ये किसने बोला? तब बहू ने कहा, ये बाबा आपने बोला, आपके मुख से हमने सुना। तब उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं बोला, मैंने सुना है। एक सुंदर प्रकाश ही प्रकाश है, और एक प्रकाश का बिंदु आता है वो मुझ में समा जाता है, इतने में मैं क्या देखता हूँ, ये वर्णन कर रहे हैं उसी स्थिति में बैठे हुए, कि आकाश से कुछ तारे, वो सितारे धरती पर आते हैं, कोई देवी प्रिंस बन जाता है और कोई देवी प्रिंसेस महाराज कुमार और महाराज कुमारी बन जाते हैं। ऊपर से सितारे आते हैं, नीचे देवी राजकुमार और देवी राजकुमारी बन जाते हैं। ये सब क्या देखा? उस समय बाबा ने ये एक्सपीरियंस सुनाया, मुझे एक आवाज आई है, जब ऐसे राजकुमार और राजकुमारी बनते देखे और एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि ऐसी सृष्टि तुम्हें बनाने के निमित्त बनना है। दृश्य पूरा हुआ, बाबा और चिंतित हुए कि ये सब कौन कर रहा है, ये कौन दिखा रहा है, ये मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ये नए चित्र और नए चरित्र ये कौन सब सुना रहा। बाबा अंदाजा लगाते हैं, बाबा यही कहते हैं, किस समय हुआ ये मालूम नहीं, शायद वही दिन था कि स्वयं सर्वशक्तिमान ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ने उस शरीर वाली आत्मा के तन में प्रवेश करके अपनी पहचान दी कि निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मेरा रूप स्वयं में ज्योति है, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये वास्तव में परमात्मा ने पहचान दी अपनी, लेकिन बाबा तब तक भी समझ नहीं पाए ये सब कौन है और क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने बिजनेस समेट लिया और अपने बच्चों को सामने बिठा करके, और जो अड़ोसी पड़ोसी स्नेह संबंध वाले थे वो सब आ जाते थे और बाबा गीता सुनाते थे, कई बार गीता हाथ में पकड़ी रह जाती थी, लेकिन जैसे कोई सुना रहा है और बाबा भी सुन रहे। सुनने वाले कहते, बाबा आज आपने बहुत अच्छा सुनाया, और बाबा फिर आश्चर्यचकित होकर यही कहते, मैंने नहीं सुनाया, मैंने भी सुना, मैंने नहीं सुनाया। अब ये आश्चर्य का रूप चलता रहा। आखिर वो दिन भी आया जब उन्हें दिव्य साक्षात्कार दिव्य ज्योति का होता है, और उस ज्योति से आवाज आती है कि मेरा स्वरूप ज्योति है, मैं ज्योति देश का वासी हूँ। अति धर्म की हानि के समय मैं सृष्टि पर पतितों को पावन करने, सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए आया, मैंने तेरे तन का आधार दिया। अब परमात्मा जिनके विषय में गीता में पढ़ते चले आते थे कि वो भगवान साक्षी बना अर्जुन का, अब सोचने की बात है कि अर्जुन इतने बड़े राजा और साक्षी बने भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? और भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार भी कराया, और साक्षात्कार में भी अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान आपका तेज में सहन नहीं कर सकता, आप मुझे अपने मोहिनी रूप दिखा दो। उन्होंने अपना साक्षात्कार जब कराया तो अपने ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कराया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भी इस साकार माध्यम को एक रथ का नाम दिया और रथ में प्रवेश हुए। और जब रथ में प्रवेश हुए तो जिस रथ में उन्होंने प्रवेश किया उसमें उनकी आत्मा भी प्रविष्ट थी। रथ एक था, रथी दो थे, लेकिन जिसका रथ था उसके वो सारथी साथी बने आकर के। एक रथ में दो रथी है, अब पहचानने में कैसे आए। वो समय था जब सामने बैठने वालों को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और वो कहते थे कि आप श्री कृष्ण रूप हो गए हो। और ये बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं साधारण इंसान हूँ, मैं कभी श्री कृष्ण नहीं हूँ। लेकिन जिनको साक्षात्कार होते थे वो उन्हें श्री कृष्ण के रूप में देखते थे और यही कहते थे आप साधारण नहीं हो। और बाबा कहते थे मैं तो कृष्ण नहीं हूँ। उनके लौकिक में बहु कई बार सुनाती थी कि मैं बाबा से घूंघट निकालती थी, क्योंकि उस समय घूंघट का रिवाज था। और भोजन देने के लिए थाली देने जब जा रही हूँ तो देखती हूँ सामने मुकुटधारी बंसरी धारण किए हुए श्री कृष्ण बैठे हैं। तो मैंने घूंघट को हटाया और देखती हूँ तो देखते देखते फिर देखा तो बाबा बैठे। फिर मैंने घूंघट निकाला, थाली को टेबल पर रख दिया और फिर देखती हूँ फिर कृष्ण है। फिर मैंने घूंघट हटाया, फिर देखती हूँ बाबा है। तो बाबा ने दृश्य देखा कि इस बच्ची को कुछ अनुभव हो रहा है, इसलिए कभी घूंघट निकालती है कभी घूंघट हटाती है। तो बाबा ने कहा बच्ची किस लिए घूंघट निकालती है, घूंघट हटा दो, बाबा तुम्हारा घूंघट आज हटा देंगे। का सेकंड टाइम मैं फिर लेकर थाली आई हूँ और मेरे हाथ से थाली ही गिर गई, क्योंकि मैं देखती हूँ श्री कृष्ण सामने बैठे हैं और मैं भी बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उनको देखते ही बस मेरा हृदय रोम रोम खिल उठा और मैंने देखते ही देखते फिर देखती हूँ बाबा दिखाई दे रहा है। आश्चर्यचकित होती हूँ ये सब क्या है। लेकिन बाबा ने एक दिन भी ये स्वीकार नहीं किया कि मैं कृष्ण हूँ। बाबा कहते थे यहाँ तक कि अखबारों में निकलने भी लग गया कि जैसे टके टके की कुल्फी बिकती है ऐसे यहाँ पर दादा के पास तो साक्षात्कार सबको हो जाता है। और बहुत लोग जो आते थे, आने वालों को भी बाबा से साक्षात्कार होते थे। लेकिन ये बाबा को इस बात का था कि ये कर्तव्य उस सर्वशक्तिवान का है, ये कर्तव्य मेरा नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि कभी बाबा ने हम बच्चों से हाथ नहीं जुड़वाया। कहते थे नहीं ये तो पतित तन है, विकारों से जन्म हुआ इस शरीर का, ये पूजा योग्य नहीं है, इसको हाथ क्यों जोड़ते हो। कभी फूल नहीं एक भी स्वीकार किया होगा, यही शब्द सुनाते ये ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर है, ये ज्ञान नहीं दे रहा ये ज्ञान सुन रहा है। जैसे बच्चे तुम विद्यार्थी हो वैसे ये भी विद्यार्थी है। लेकिन विद्यार्थियों में भी कोई नंबर वन होता है, कोई नंबर टू होता है, कोई मॉनिटर होता है, तुम ऐसे समझ लो। लेकिन मैं भी तो तुम्हारे जैसा विद्यार्थी हूँ, इसलिए हम बाबा को बड़े प्यार से बाबा कहते। कई बार नीचे बैठते थे बाबा और हम बच्चे चारपाई पर बैठे होते थे, जगह नीचे नहीं तो चारपाई पर बैठ जाओ। ऐसा नहीं गुरु जी बैठे हैं तो गुरु गद्दी के साथ पांव भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा कभी रूप नहीं हुआ। क्योंकि बाबा ने इस बात को स्वीकार किया कि ये केवल मात्र उस दाता का रथ है जिसका आधार लेकर वो ज्ञान सुना रहा है। और बाबा ने ये शब्द कहा ये 24 घंटे इस तन को उस प्रभु के अर्पित करता है, जब भी चाहिए ईश्वर इसे इस्तेमाल करेगा। और हर क्षण बाबा ऐसा ही रहते थे जैसे उस दाता के सच्चे सेवक हों। जब बाबा खाना खाते थे कहते थे खाना खाता नहीं हूँ, इस घोड़े को घास खिलाता हूँ क्योंकि मालिक ने इस पर सवार होना है। क्या समझते हो? इस कार को ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर के कार को इस कार को ठीक से पेट्रोल देता हूँ क्योंकि इस कार का इस्तेमाल करने वाला कौन है? बच्चे समझते हो? तो बाबा के मुख से बाबा की पहचान हम बच्चों को मिली। हमने जो अपने जीवन दिए, हमने जीवन साकार मनुष्य को नहीं दिया, उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को दिया। हम अपना अनुभव इसके मध्य सुनाते हैं। हमारी लौकिक में एक बहन की शादी हो गई और पिता का यही विचार था कि दूसरी बच्ची की भी शादी कर दूंगा। हम उस समय पढ़ी रही थी और उन्होंने हमको कहा कि शादी कर देने के बाद आप जो भी करना हो कर लेना, लेकिन उससे पूर्व नहीं। हम मैं निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ ताकि किसी के हाथ में मैं हाथ दे दूं। उस समय मुझे वो नशा चढ़ा कि एक इंसान के हाथ में बच्ची का हाथ देकर निश्चिंत बन रहा है और मैं भगवान के हाथ में अगर हाथ दूंगी तो इससे बड़ी निश्चिंतता क्या हो सकती है। हम दाता के हाथ में अपना हाथ देंगे, क्या होगा बड़े होने पर? अरे अच्छे से अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता, निश्चय है। उस दाता के बच्चे, इंसान के बच्चे नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा पिता ने उस ज्योति स्वरूप ने अपनी पहचान दी और इस रथ में प्रविष्ट हुए और सिंध हैदराबाद में लगभग 400 परिवारों के परिवार के मेंबर्स इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में उस समय केवल मात्र ओम की ध्वनि बाबा लगाते थे और ओम ऐसे बाबा बहुत प्यार से बोलते थे और इस ओम की ध्वनि में ही कई साक्षात्कार में चले जाते। इससे लोगों ने ओम मंडली का नाम देकर इस विद्यालय को पुकारना शुरू किया। ये ओम मंडली है क्योंकि ओम शब्द देते। और इतने में आप सबको मालूम है कि जब पार्टीशन हुआ और भयंकर विनाश का दृश्य हुआ था, खून की नदियां बही थी जब पार्टीशन हुआ, लेकिन उस समय भी बाबा अपने बच्चों के साथ वहीं रहे क्योंकि उस सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव ने उनके मुखारविंद से ये बोल बोले कि जब तक सेटल हो जाए जो यहाँ से गए हैं भारत में, तब तक आपको यहीं रहना है। इसलिए 3 वर्ष तक पार्टीशन के बाद अपना ये ईश्वरी विश्वविद्यालय सिंध हैदराबाद कराची में ही रहा और 3 वर्ष तक मुस्लिम लोग, जबकि उनको वहां पर आ चुके थे, शासन शुरू हो गया था, वो यही कहते थे खुदा प्रस्त लोग हैं ये। और जब ऑलमाइटी परमात्मा पिता की तरफ से संदेश मिला कि देवी धर्म की पुनः स्थापना करनी है, अनेक धर्म सृष्टि पर है लेकिन जीवन की दिव्यता की नाश होता चला जा रहा है, जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता का धर्म जिसको देवता धर्म कहा जाएगा उसकी स्थापना भारत भूमि पर ही की जा सकती है क्योंकि भारतवासी ही देवी देवताओं को मानने वाले हैं। 3 वर्ष के पश्चात जब वहां से स्थानांतर होना था तो वहां की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये कहा गया था कि आप यहां से सुई तक भी ले जा सकते हो, शिप भर के जो चाहिए आप ले जाइए, आपको कोई भी मना नहीं है। और वहां से ही पलंग और वहां से सामान, कुर्सी, फर्नीचर सब कुछ लेकर के वहां से शिप के द्वारा ओखा बंदरगाह पर आए। लेकिन उससे पहले ये निश्चित किया गया कि भारत में कहाँ रहना होगा क्योंकि 400 बच्चे थे जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ था, जैसे बाबा का जीवन जिएगा ऐसा ही हम जीवन जिएंगे। एक रूहानी सेना बन चुकी थी जिन्होंने 14 वर्ष तक वहां तपस्या की थी, और जब ये तपस्वी शिप में सवार होकर आए और ओखा बंदरगाह से ट्रेन के द्वारा माउंट आबू आने से पूर्व शिव बाबा ने ये संदेश दिया था कि पहाड़ पर जाकर ही बसना है, तब उस समय दो बहनें हमारी पूर्ववत कराची से अहमदाबाद में आई और अहमदाबाद से पता चला कि माउंट आबू एक ऐसी पहाड़ी है जहां राजे लोग अपनी गर्मियों के लिए बड़े बड़े महल बनाए रखते हैं और वहां आकर रहते हैं, लेकिन राजाओं की राजाई जब खत्म हो गई पार्टीशन के बाद, उस समय ये स्थान खाली पड़े थे और यहाँ पर राजा का, राजकोट के राजा, भरतपुर के राजा का महल था जो काफी बड़ा था, भले साधारण था, लेकिन उस महल में आकर के बाबा अपने बच्चों सहित रहे। और आप समझ सकते हैं कि एक जगह के क्लाइमेट से दूसरी जगह आना, और उस समय माउंट आबू क्या था, एक जंगल जैसा था, जैसे यहाँ के आदिवासी थोड़े लोग रहते थे, ज्यादा पब्लिक यहाँ थी ही नहीं। हम लोग जब यहाँ आते थे, मैं समझती 56-57 में, तब से हम आते थे और यहाँ पर कोई होटल नहीं होता था, केवल दो कारें हम देखते थे यहाँ होती थी, कोई अपनी कार चलाता था, बाकी बैलगाड़ी बाबा ने एक ले रखी थी जिस पर सामान लाद कर आते थे और जाते थे। अपना घर भी भरतपुर कोठी के पश्चात जब गवर्नमेंट का फैसला हुआ, उस समय राजस्थान और गुजरात सरकार अलग अलग जगह बन गई, उस समय वो पहले समय छोड़ना पड़ा। और फिर आप पांडव भवन जो आपने देखा होगा, इसे पोकरान हाउस कहते थे, ये पोकरान बाबू एक थे उनकी ये बिल्डिंग थी, उन्होंने उस बिल्डिंग को बेचा और उस बिल्डिंग को लिया गया और वहां शिफ्ट हो गए। बड़ा साधारण सा वो स्थान बना हुआ था, लेकिन बाबा ने जब बच्चे इतने सारे वहां थे तो जो बच्चों को लेकर आया था, आलमाइटी की तरफ से ब्रह्मा बाबा के मुख से, ये ब्रह्मा बाबा भी नाम शिव बाबा ने दिया कि नई सृष्टि की रचना के तुम्हें निमित्त बनना है, इसलिए बाबा तुम्हें नाम देता है प्रजा पिता ब्रह्मा। दुनिया सृष्टि ब्रह्मा ने रची, तुम ब्रह्मा के रूप से इस मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि में परिणित करने के लिए बाबा ने तुम्हें निमित्त बनाया। उस समय बाबा के द्वारा ये शिव बाबा ने संदेश दिया कि इन सब बच्चों से पूछो कि ये कौन है, तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण करते करते पूछा कि तुम सब कौन हो, कहते हैं कि कहां से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के कमंडल में वो गंगा जी आई थी और भागीरथ के यहाँ से निकली थी, कई कहानियां बनी हुई हैं। तो बाबा कहते थे वो पानी की गंगा नहीं है जो पतितों को पावन करेगी, ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा ज्ञान सुन जीवन में धारण करने वाली ही ज्ञान गंगाएं हैं, और इन ज्ञान गंगाओं के द्वारा जब ज्ञान सुनेंगे तो पतित पावन परमात्मा से उनका कनेक्शन जुटेगा और वो आत्माएं पतितों से पावन बन जाएंगी। तब बाबा ने उनके महावाक्यों द्वारा एक बार बाबा ने बोला, और सभी बैठे हुए थे क्योंकि ज्यादा माताएं और कन्याएं थी, थोड़े भाई थे। तब बाबा ने बोला कि तुम सब कौन हो, तो सबने बड़े प्यार से कहा हम ज्ञान गंगाएं हैं, क्योंकि ज्ञान सागर परमात्मा से ब्रह्मा मुख से नॉलेज सुन करके हमने जीवन में धारण कर अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प किया है। तब बाबा ने कहा गंगा किसे कहते हैं जो बहती है, जो एक जगह खड़ी रहती है वो गंगा नहीं, वो तालाब है, वो टुबका है। खड़े पानी में तो जंक आ जाता है। अगर गंगाएं हो तो कुंभ मेला हो रहा था इलाहाबाद में, बाबा ने कहा कि जाओ, जाकर के ज्ञान गंगा, उस गंगा पर जाकर सत्य सागर की पहचान देकर, ज्ञान सागर का ज्ञान देकर, अपनी पहचान देकर पतितों को पावन करने का रास्ता दिखाओ। तब बाबा ने वहां से अपने बच्चों को चारों तरफ भारतवर्ष में भेजा और जाकर कहा कि जो ज्ञान सागर से ज्ञान लिया है उस ज्ञान का संदेश सबको दो। और ज्ञान का मुख्य संदेश क्या था? ये देह तुम नहीं हो, ये देह तो तेरा चोला है। तू नाशवान नहीं, तू अजर अमर अविनाशी है। तो अपने स्वरूप को स्मृति में ला। ये देह रूप में मेरा ये पुत्र है या मैं इसका पुत्र हूँ? ये मेरा पिता है, मैं इसका पिता हूँ? लेकिन हे आत्माएं, तुम सब मुझ परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, और तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता चाहिए। और सुख शांति आनंद प्रेम मानव को मानव मात्र से नहीं मिल सकता। तुम सब का अधिकार सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का मुझ पिता परमात्मा से मिल सकता है। मेरे सब बच्चों को संदेश दे दो कि अगर वो जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हैं तो स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़े। तो ये संदेश देने के लिए बहनें निकली। और जब वो बहनें और भाई भारत के कोने कोने में निकले तो धीरे धीरे जब लोगों ने सुना और बहुत सुंदर अनुभव होने लगे, जीवन से विकृतियां और विकार नाश होने लगे, जीवन से पुराने देह अभिमान के संस्कार बदलने लगे, संबंधों में स्नेह और प्यार बढ़ने लगा, तो लोगों को इतना स्नेह जागा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। बाबा ने उन्हें भेजा था कि थोड़ा संदेश देकर वापस आ जाना। जब वापस गए तो उनको पत्र जाते थे कि जैसे जल के बिना मछली पागल मर जाती है, अगर आप ज्ञान जल देने वाली ज्ञान गंगाएं हमसे चली जाओगी तो हम मछली की न्याय खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा से रिक्वेस्ट किया कि बाबा इनको वापस भेजो। इस प्रकार धीरे धीरे बाबा ने निमंत्रण पर, उनके आग्रह पर, जब उन्होंने प्रबंध करके रखे, तब बाबा ने अपनी कुछ बच्चियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा। जैसे दिल्ली में भेजा सर्वप्रथम, लखनऊ में भेजा, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भेजा। और भेजते भेजते आज आप समझ सकते हैं कि लगभग 10,000 सेवा केंद्र 140 देशों में ईश्वरीय कर्तव्य चल रहा है। और हम जैसी लगभग हजारों बहनें जिन्होंने अपने जीवन को इस सृष्टि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस संसार के परिवर्तन करने के लिए अपना जीवन इस सेवाओं में दे दिया, ऐसे लगभग 25,000-30,000 बहनें हैं जो सेवाओं पर लगी हुई हैं। और जो घर परिवार में रहते हैं उनका जीवन एक औरों के लिए सैंपल बना हुआ है, जो अपने घर परिवार में रहते भी सबको ज्ञान देते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि मैं जीवन कहानी को बहुत कट-कट करके सुना रही थी। बहुत सी बातें थी जो दिल करता था सुनाऊं लेकिन नहीं सुना रही थी। लेकिन आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप ये ध्यान रखना, आप अपने घर में आए हैं, ये परमात्मा पिता का स्थापित किया संतान। आप सोचिए कहाँ इतना छोटा सा, सुनते थे वामन अवतार हुआ था, छोटा सा था, ये मछली अवतार हुआ, कच्छ अवतार हुआ, मच्छ अवतार था, अरे इतने से कटोरे में रखा वो बढ़ गई, फिर उसको इतने से बड़े चीज में रखा वो बढ़ गई, तालाब में रखा वो बढ़ गया, आकर सागर में रखना पड़ा। और सचमुच इसी प्रकार परमात्मा पिता जब आए तो छोटा सा पोखरान हाउस पांडव वन था, धीरे धीरे ज्ञान सरोवर बना और ज्ञान सरोवर के पश्चात आज देख रहे हैं शांतिवन बना। और ये भी जब अपने विद्यार्थी आते हैं तो ये संस्थान बहुत छोटा हो जाता है, यहाँ सब नहीं बैठ पाते। तो अभी विचार चलता है कि लगभग 60,000 लोगों के बैठने का एक हॉल बनाया जाए। लेकिन ईश्वर की तरफ से ये कहना है कि बच्चे सारे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, एक दिन वो यहाँ आएंगे, किस हाल में उनको रहाओगे और सुलाओगे, धरती उनका बेड बनेंगी, आकाश उनकी छत बनेंगी, पहाड़ उनके तकिए बनेंगे, तभी संपन्न हो सकेगा। इसलिए आप फिर भी अच्छे टाइम पर आ गए हो कि आपको सोने को कमरा तो मिल रहा है, आपको रहने के लिए स्थान तो मिला है, चारपाई भी मिली है, तकिया भी मिला है, चादर कंबल भी मिला है। उस टाइम पर नहीं आए कि जब आपको पहाड़ ही जमीन मिलती और पहाड़ ही आपको तकिया मिलता। इसलिए बहुत बहुत मुबारक है कि आप सब यहाँ पहुँचे।